मार्गदर्शन।
श्रोताओं, कार्यक्रम मार्गदर्शन की ये कड़ी लेकर ज़हरा ज़ैदी और मोहम्मद मेहदी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के व्यक्तित्व का वरिष्ठ नेता की जबान से वर्णन करेंगे। आशा है पसंद करेंगे।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ऐसी महान हस्ती थे कि जिसकी अच्छाइयों, ज्ञान, सदाचारिता, पवित्रता, बुराइयों से दूरी, दुश्मनों के मुकाबले में वीरता, कठिनाइयों के मुकाबले में धैर्य व दृढ़ता की सभी ने गवाही दी, चाहे वो समर्थक हों या विरोधी, शिया हों या उनसे श्रद्धा न रखने वाले हों। ये महान हस्ती जिस समय शहीद हुई उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी।
दसवें इमाम हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जनता के मार्गदर्शन का ईश्वरीय दायित्व उनके पुत्र इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व में जनता के मार्गदर्शन के ईश्वरीय दायित्व को संभालने की सारी विशेषताएँ मौजूद थीं। वो अपने समय के सभी लोगों से उत्तम थे। ज्ञान, बुद्धि, वीरता, क्षमाशीलता और अच्छे आचरण की दृष्टि से सबसे बेहतर थे। उनके महान पिता हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपने सुपुत्र की जान की रक्षा के लिए अपने निकटवर्तियों को सांकेतिक रूप में उनके उत्तराधिकारी बनने के बारे में सूचित कर दिया था।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 8 रबीउल अव्वल सन 232 हिजरी कमरी को मदीना में पैदा हुए। उन्होंने 22 साल की उम्र में इमामत अर्थात जनता के मार्गदर्शन का ईश्वरीय दायित्व संभाला। यूं तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को भी अपने दौर में शासन की ओर से दबाव सीमितता का सामना था, लेकिन अपने से पहले दो इमामों की तुलना में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अपेक्षाकृत कम घुटन भरे माहौल का सामना करना पड़ा। इसका एक कारण यह था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के समय में पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के अनुयायी इराक सहित इस्लामी जगत में शक्तिशाली हो चुके थे। ये लोग तत्कालीन शासकों के खिलाफ थे और किसी भी अब्बासी शासक को वैध नहीं समझते थे, बल्कि उनका मानना था कि इस्लामी शासन की बागडोर पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि ये हस्तियां ही ईश्वर की ओर से जनता का सबसे बेहतर ढंग से मार्गदर्शन करने के योग्य हैं। उस समय पैगंबर इस्लाम के 11वें उत्तराधिकारी हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सबसे शानदार व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसलिए वे कम समय में लोगों के बीच सामाजिक व आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अहम हस्ती बनकर उभरे।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जीवन काल को मूल रूप से 3 दौरों में बांटा जा सकता है। पहला दौर 12 साल का है, जिसके दौरान वे मदीने में रहे। दूसरा दौर 10 साल का है, जिस दौरान वे सामर्रा में थे, लेकिन उस समय तक जनता के मार्गदर्शन का दायित्व नहीं संभाला था। और तीसरा दौर 6 साल का है कि इस दौरान आपने इमामत अर्थात जनता के मार्गदर्शन का ईश्वरीय दायित्व संभाला।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी अपने पूर्वजों की भांति इस्लाम के आधारों को मजबूत करने में व्यस्त रहे। उन्होंने अपने समय में मुसलमानों की आस्था को मजबूत करने का बीड़ा उठाया, जो बहुत बड़ा काम है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम गुप्त रूप से पत्राचार के जरिए लोगों में धार्मिक आस्था का प्रचार व प्रसार करते थे। वो नेटवर्क जिसे सातवें इमाम हज़रत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने तत्कालीन शासकों की ओर से दबाव के कारण कायम किया था और उनके बाद मजबूत होता गया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में नेटवर्क बहुत ही मजबूत बन चुका था। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इसी नेटवर्क के जरिए अपने दोस्तों व पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के अनुयायियों से संपर्क में रहते और इस तरह शहरों और विभिन्न देशों में अपने प्रतिनिधियों के जरिए लोगों से संपर्क रखते थे। इस काम से तत्कालीन शासक का क्रोध बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस समय समाज पर बहुत कड़े सुरक्षा नियम लागू किए गए थे। यही कारण था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के काल में दो अब्बासी शासकों मोतज और मोहतदी अब्बासी ने उन्हें जेल में डाल दिया और उनकी हत्या के बारे में षड्यंत्र रचते रहे। इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम पर अब्बासी शासक की जेल में भी नज़र रखी जाती थी। अब्बासी शासकों ने जेल में भी इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम के पीछे जासूस लगा रखे थे। अब्बासी शासकों में मोतज इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम से ज़्यादा दुश्मनी करता था और उसी ने इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम की हत्या का आदेश दिया था, लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम ने अपने गूढ़ ज्ञान के जरिए ये बता दिया था कि ऐसा नहीं हो पाएगा। इस तरह इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम की हत्या का आदेश जारी होने के 3 दिन के भीतर ही मोतज को सत्ता से हटाकर कत्ल कर दिया गया।
इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छे व्यवहार के युवा थे। जब बात करते थे तो लोग उनकी बातें सुनने में सम्मोहित हो जाते थे। उनके चेहरे से बहुत वैभव झलकता था। इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम बहुत ही सुंदर ढंग से पवित्र कुरान की आयतों की व्याख्या करते थे और ऐसे शिष्यों को उन्होंने तैयार किया था जो कुरान की आयतों की व्याख्या करने में निपुण थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इस बात के दृष्टिगत कि कहीं लोग कुरान की सही शिक्षाओं से दूर न हो जाएं, लोगों और ख़ासतौर पर अपने निकटवर्ती लोगों के बीच पवित्र कुरान की आयतों की व्याख्या की सही शैली बयान करते थे।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बहुत कम लोगों के बीच आते थे और वे दूसरों इमामों की तुलना में गुण बातों की भविष्यवाणी अधिक करते थे कि इसका कारण इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर के विशेष राजनीतिक हालात थे।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के महान व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी बातें इतिहास में मिलती हैं, जैसे कि अब्बासी शासनकाल में जेल में उनका व्यवहार बहुत ही प्रसिद्ध है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इमामत के 6 वर्ष सामर्रा में गुजारे। इस दौरान वे शासन तंत्र की गहरी निगरानी में रहते और इन 6 सालों में 3 साल वे जेल में बंद रहे। इस्लामी इतिहास में आया है कि तत्कालीन अब्बासी शासक ने 2 गुलामों को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को यातना देने का काम सौंपा, लेकिन जब इन दोनों गुलामों ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सुंदर व्यवहार को देखा तो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं को सुधार लिया। जिस समय इन गुलामों से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कैदी तो दिन में रोज़ा रखते हैं और रात भर ईश्वर की उपासना में लीन रहते हैं और किसी से कोई बात तक नहीं करते।
इस तरह की एक और मिसाल अब्बासी शासक मोतमद अब्बासी के प्रधानमंत्री उबैदुल्लाह खाकान की है, जो बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, लेकिन जब उसका सामना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से होता तो उनके सम्मान में अपने स्थान से खड़ा हो जाता और उन्हें अपनी गद्दी पर बिठाता था और हमेशा ये कहा करता था कि समर्रा में उनके जैसा किसी को ना पाया। वो अपने समय के सबसे बुद्धिमान व बड़े संत हैं।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऐसी थी जो किसी इमाम के कंधे पर नहीं थी। वो जिम्मेदारी ये थी कि उन्हें समाज को इस बात के लिए तैयार करना था कि मानवता के अंतिम मोक्षदाता हज़रत इमाम मेहदी लोगों के सामने प्रकट नहीं होंगे और समाज इमाम मेहदी के अदृश्य होने की वास्तविकता को स्वीकार कर ले। इस उद्देश्य के लिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने श्रद्धालुओं से सीधा संपर्क किया और दूसरी ओर इस बात पर बार बार वे बल देते थे कि हजरत इमाम मेहदी जन्म लेंगे।
मानवता के अंतिम मोक्षदाता हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जन्म इस प्रकार हुआ कि किसी को कुछ पता न चला और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी अपने इस बेटे के जन्म की खबर को छिपाए रखा, क्योंकि इस बात का ख़तरा था कि अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जन्म लेने की खबर शासन तंत्र तक पहुंच गई तो वो उन्हें शहीद करने की कोशिश करेगा। उस समय अब्बासी शासन ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर बहुत अधिक पाबंदी लगा दी थी। हर ओर घुटन का माहौल था। چونکہ یہ بات عام ہو چکی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے ونش سے ہوں گے، اور سبھی لوگ یہ جانتے تھے کہ شیعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کے جنم لینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کارن وش امام حسن عسکری علیہ السلام پر بہت گہری نظر رکھی جا رہی تھی، ہر اور ہر چھڑ ان کی جاسوسی ہو رہی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے جیون کال میں اپنے بیٹے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کبھی بھی لوگوں کے بیچ نہیں لائے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے سورگواس کے بعد بھی زیادہ تر لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جنم ہو چکا ہے۔
ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی امام حسن عسکری علیہ السلام کو جوانوں کے لیے خاص طور پر بہترین آدرش بتاتے ہیں۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، یہ مہان ہستی جس سمے شہید ہوئی صرف 28 ورش کی تھی۔ شیعوں کے ویبھوشالی اتہاس میں اس طرح کے نمونے بہت سے ہیں۔ ہمارے سمے کے امام جو سبھی پرکار کے سدگنوں سے سمپن تھے، جس سمے دشمن کی اور سے دیے گئے زہر سے اس دنیا سے گئے، تو ان کی آیو کیول 28 ورش تھی۔ ایسی ہستی آدرش ہے کہ جس کے بارے میں جوان محسوس کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک آدرش موجود ہے۔ ایک اور مہان ہستی امام محمد تقی علیہ السلام ہیں جو 25 سال کی آیو میں شہید ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 28 ورش کی آیو میں شہید ہوئے کہ جن کی مہانتا کا کیول ہم ہی نہیں بلکہ ورودھی اور دشمن بھی گنگان کرتے ہیں۔